सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। पल सुनहरा साथ तेरे है, हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा।
हम सबके बीच में उपस्थित हैं आदरणीय भ्राता ब्रह्मा कुमार राजयोगी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, हम आपका एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। ये अमृतसर और अम्बाला का ग्रुप है। डॉक्टर साहब के साथ वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि आपने बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में भी अपनाया है और अनेक आत्माओं को बाबा के ज्ञान का परिचय दे करके और उसकी गहराई में ले जा करके उनके जीवन को भी मालामाल कर रहे हैं। वर्तमान समय आप ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू और उसकी जो ब्रांचेस हैं नीचे आबू रोड में, उसके आप सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी और मेडिसिन के रूप में आप कार्यरत हैं। हमारी जो ज्ञान सरोवर में एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड है, उसके आप परमानेंट फैकल्टी हैं। 1986 से आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं और 1995 से आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवाएं प्रारंभ कर दी थी। देश विदेश में आपने अपने कई ज्ञान से संबंधित लेक्चर्स तो दिए ही हैं, उसके अलावा इंडिया एब्रॉड में आपने मेडिसिन को लेकर के भी आपने कई बार वहां वक्तव्य दिए हैं और विशेषकर माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इत्यादि, और विशेष रूप से 3D हेल्थ केयर पर आप अपने वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। आप सबने कैड ये शब्द सुना होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के बारे में जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके ऊपर काफी बड़ी रिसर्च हो चुकी है और अभी भी होती रहती है। उसके मुख्य इन्वेस्टिगेटर और कोऑर्डिनेटर हैं आप। थ्रू हेल्दी एंड हैप्पी लाइफस्टाइल से कैसे आर्टरीज को खोला जा सकता है, उसकी विशेष स्टडी और रिसर्च आपने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर की है, माउंट आबू में भी की है। मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, इन चारों के बैलेंस से कैसे आर्टरीज को खोला जा सकता है, और इसमें सफलता प्राप्त हुई है। और जनवरी 2004 में सिंगापुर में एशिया पैसिफिक कांग्रेस में आपने अपने जो रिसर्च को प्रेजेंट किया था, उस समय वहां जो प्रेजेंट कार्डियोलॉजिस्ट थे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड से आए हुए थे, उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया और कहा कि हम इसको अपनी कंट्रीज में इस प्रोजेक्ट को फॉलो करना चाहते हैं। फिर मुंबई में 2005 में डायमंड एनुअल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें लगभग 10,000 फिजिशियंस और कार्डियोलॉजिस्ट ने भाग लिया था। उसमें भी आपके पेपर्स प्रेजेंट हुए और वहां से भी आपको बहुत अप्रिसिएशन मिला और फॉलो करने की बात हुई। आपने कई नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने पेपर्स लिखे हैं और प्रेजेंट किए हैं। आपने 2006 से लेकर के 2010 तक, पहले दो साल यहां नीचे शांति वन में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी नाम से एक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया था, अपने ऑर्गेनाइज की थी, और जिसमें देश से बहुत डॉक्टर्स यहां पर आए हुए थे और बहुत सफल रही वो कॉन्फ्रेंस, और उसके पश्चात आपने दिल्ली में ना तीसरा चौथा पांचवा और छठा इसका भाग वहां पर प्रेजेंट किया था। इस प्रकार आपकी अनेक प्रकार की सेवाएं चलती रहती हैं, और मैंने जैसे बताया आप ज्ञान के अनेक विषयों में रुचि रखते हैं और अनेक विषयों को मंथन मनन करके हमारे बीके भाई बहनों को भी उसका लाभ अक्सर देते रहते हैं और बहुत ही सरल रीति से उसका स्पष्टीकरण करते हैं। आज आपका विषय है त्याग, तपस्या और सेवा, तो मैं निवेदन करती हूँ आपसे कि आप इस विषय पर हमें लाभान्वित करें। भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी।
ओम शांति। त्याग, तपस्या और सेवा, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल अभी लेते हैं तो यही बात करते हैं ना, बाबा त्याग तपस्या और सेवा की सदा ही मूर्त रहे, क्योंकि बिना त्याग के तपस्या नहीं हो सकती और बिना तपस्या के सेवा नहीं हो सकती, तीनों का आपस में कनेक्शन है। त्याग पे तो आप मुरली सुन रहे ना, लास्ट संडे भी सुनी, संडे भी सुनी ना, उससे पहले संडे भी सुनी, तो त्याग क्या है और तपस्या क्या है, सेवा क्या है, हम पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें जब हम आत्माएं सत्युग में थी तो कैसी थी हम आत्माएं, सतो प्रधान थी, आत्म अभिमानी थे, सातों गुणों से भरपूर थे। सतो प्रधान माना, सतो प्रधान शब्द कहां से आया, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, है ना, तो सातों गुणों से भरपूर थे। और इस स्थिति को पावन स्थिति कहते हैं ना, स्थिति पावन एक स्थिति है, जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर होती है तो उसको हम पावन आत्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं ना। और ऐसे ही जब हम द्वापर के बीच में आके पहुंचे, सॉरी सत्य त्रेता का एंड होने का हुआ है, तो आत्मा की एनर्जी क्या हुई, आदि से कम हो गई, है ना, आदि से कम हो गई, तो आत्मा क्या कहलाई, शाम हो गई, अभी दोपहर है ना, जैसे 12 बजे सूरज एकदम टॉप पे है, बहुत तेज है, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, मतलब फुल लाइट है अभी ना, और जब शाम हो जाएगी तो 7-7.5 बजे क्या हो जाएगा, 7:30 क्या हो जाएगा, लाइट डिम हो जाएगी, ठीक है, यही लाइट डिम हो जाएगी ना। तो जब आधी से कम लाइट हो जाएगी, कौन कौन सी लाइट है आत्मा के पास, ज्ञान की लाइट है, ज्ञान माना सत्य की समझ है, ज्ञान माना सत्य की समझ है, दूसरा क्या है, कौन सी लाइट है, पवित्रता की लाइट है, तीसरी लाइट कौन सी आत्मा के पास, शांति की लाइट है, चौथी लाइट कौन सी है, रूहानी प्यार की लाइट है, कौन से प्यार की लाइट है, रूहानी प्यार, खाली प्यार शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि प्यार का मतलब है दुनिया में कुछ और लेते हैं, रूहानी प्यार की लाइट ना, और फिर सुख की लाइट नहीं, अतिंद्रिय सुख की लाइट, एक होता सेंसुअस हैप्पीनेस है ना, खाने का सुख, देखने का सुख, बोलने का सुख, सुनने का सुख, है ना, हमारी जो हमारी कौन सी हैप्पीनेस है, अतिंद्रिय सुख है ना, इंद्रियों से ऊपर का सुख, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ये फीलिंग है ना, और फिर आनंद की लाइट है, और फिर सर्व शक्तियों की लाइट है, ये सात लाइट आत्मा के पास है। सातों लाइट थी भरपूर, तो आत्मा कैसी थी, आत्मा सातों गुणों से भरपूर थी, तो आत्मा के तीन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, और पांच शरीर की पांच कर्मेंद्रियां हैं, स्थूल, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा। त्वचा एक तो बाहरी त्वचा है, एक अंदर भी त्वचा है, मुंह के अंदर त्वचा है, नाक के अंदर त्वचा है, सांस की नाली में भी त्वचा है ना, सांस ट्रेकिया है ना, सांस की नाली का ट्रेकिया है, वोकल कॉर्ड है, यहाँ पे लैरिंग्स है, फिर हमारा ट्रेकिया है, फिर दो में बटता है, प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं, फिर आगे जाके और ब्रांचेज और ब्रांचेज और ब्रांचेज, फिर वहां जाके अंत में जाके ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो खून में कार्बन डाइऑक्साइड है वो सांस की नाली में आ जाती है, और जो सांस की नाली में ऑक्सीजन है वो कहां चली जाती है, खून में चली जाती है, ठीक है। तो ये भी सेंस करती है ना कि ऑक्सीजन हमको जो अंदर, ये भी त्वचा, ये भी अंदर के जो म्यूकोसा है वो सेंस करता है कि हमको क्या बाहर भेजना है, हमको ऑक्सीजन देनी है ब्लड में, और क्या लेना है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर निकाल देना, ये भी एक सेंस है ना, नहीं है सेंस है ना, तो ये सेंस नहीं तो कैसे पता लगे, नहीं तो अगर उल्टा काम कर ले तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भर ले और ऑक्सीजन सारी बाहर निकाल दे तो क्या होगा? ये सेंस है ना अंदर, ये भी सेंस ऑर्गन है कि नहीं? स्किन में भी हमें गर्म ठंडे का पता लगता है, हर सेंस का पता लगता है। ऐसे ही फिर हमारी जो है दूसरी सेंस कौन सी है? हमारी आंतों, हमारी आंतें हैं, 24 फुट लंबी आंत है, खाने की नाली है, पेट है, नीचे हमारी छोटी आंत है, उसके भी कई पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम, फिर बड़ी आंत है उसमें, उसके भी आगे पार्ट्स हैं, 24 फुट लंबी आंत है, उसमें भी सेंस है, खाना पचता है, खाना पच के नीचे पहुंचता है, फिर उसमें से कितना चाहिए, कितना ग्लूकोज चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, आयरन कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, जिंक कितना चाहिए, है ना? वहां भी सेंस है, कितना वहां खरीदना पड़ता है, पहले तो पच जाता है, आगे जाता है, फिर प्रेजेंट होता है वहां पे, फिर हमारे वहां भी सेंस है, वो भी सेंस करते हैं कि हाँ इतना ग्लूकोज आया, मान लिया आपने 100 ग्राम घी खा लिया, अब 100 ग्राम में से आपको कितना चाहिए, 100 ग्राम आपने घी खाया, मक्खन खा लिया, और बॉडी को चाहिए 0.5 ग्राम, तो क्या होएगा? तो 0.5 ग्राम एब्जॉर्ब होएगा, बाकी सारा निकल जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना? सिर्फ 0.5 ग्राम, ये सेंस है, वहां पे खरीदना पड़ता है अंदर ना, उसके लिए एनर्जी लगती है, अंदर से डिमांड आती है, इतना 0.5 ग्राम चाहिए, 750 मिलीग्राम चाहिए, है ना, या 1 ग्राम चाहिए आज, है ना? हमने आयरन खा लिया 1000 मिलीग्राम और बॉडी को चाहिए 10 मिलीग्राम, तो 10 मिलीग्राम ही अब्जॉर्ब होएगा, ठीक है? किसी दिन 20 मिलीग्राम की डिमांड है तो 20 मिलीग्राम ही अब्जॉर्ब होएगा, समझ रहे हैं? तो ये सेंस है हमारी, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनको भी क्या चाहिए, इनको भी 7 लाइट चाहिए, मन बुद्धि संस्कार को भी, तो साथ हमारे सत्युग में आत्मा के पास 7 एनर्जी थी, तो बुद्धि में भी 7 एनर्जी भरी हुई थी, ज्ञान माने सत्य की समझ, सत्य की समझ भी थी, पवित्रता भी थी, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां थी, बुद्धि भरी हुई थी, मन में भी भरा हुआ था, मन में भी 7 लाइट भरी हुई थी, और संस्कारों में भरी हुई थी, और आंखों में भरी हुई थी, है ना, पवित्रता, ज्ञान भी भरा, समझ भी भरी हुई थी, मुझे क्या देखना है, मुझे आत्मा देखना है, ना? ये समझ थी ना आंखों को, नहीं थी, है ना? सबको आत्मा देखना, पवित्रता भरी हुई थी, शांति भरी हुई थी, रूहानी प्यार भरा हुआ था, इंद्रिय सुख आनंद शक्तियां भरी हुई थी, कान में भी भरा हुआ था, है ना, मुंह में भी भरा हुआ था, है ना, नाक में भी भरी हुई थी, स्किन में भी भरी हुई थी, अंदर इंद्रिय अंदर भी, सांस की नाली में भी, है ना, और पेट की नाली में भी भरी हुई थी, फिर हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं, उसके अंदर की भी नाली होती है, उसके अंदर भी लाइनिंग होती है एंडोथीलियम की, उसको भी समझ होती है, उसमें क्या अंदर जाना है, क्या वो ट्रांसपोर्ट मीडियम है, वहां भी समझ भरी हुई थी, है ना, तो वो समझ थी, और फिर हमारी 80,000 अरब कोशिकाएं, उनमें भी समझ थी, ये 7 एनर्जी भरी हुई थी, इसलिए हमारी काया कैसी थी, कंचन काया, 2 शरीर होते हैं हमारे पास, कितने शरीर होते हैं, एक तो हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, एक सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर किसका बनता है, किसका बनता है, वो हमारा मन बुद्धि संस्कार है ना, ये हमारी 3 सूक्ष्म शक्तियां ना, इनसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, अगर ये सातों, अगर ये हमारा मन बुद्धि संस्कार में 7 एनर्जी भरपूर है, ज्ञान से भरपूर है, पवित्रता से भरपूर, शांति, प्रेम, सुख, आनंद शक्तियों से भरपूर है, तो हमारा शरीर लाइट का है, सूक्ष्म शरीर का, ठीक है, हमारी बुद्धि में 7 गुण भरे हुए हैं, हमारे मन में, मन मन हमारी स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प में 7 गुण भरे हुए हैं, संस्कारों में 7 गुण भरे हुए हैं, तो हमारा बॉडी कैसी है, लाइट की बॉडी है, ठीक है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी कंचन काया थी, कंचन माना सोने जैसी काया थी, सोना माना शुद्ध, शुद्ध था, पवित्र था, है ना, और स्थूल शरीर भी हमारा 5 तत्वों का बना हुआ, वो भी कंचन काया थी, समय बीता, 8 जन्म लिए, 12 जन्म और लिए, फिर क्या हुआ, 20 जन्म लेते रहते हमारी एनर्जी आधी रह गई आत्मा की, आत्मा की एनर्जी, तब तो हम देवी देवता कहलाते थे, और फिर एनर्जी आधी हो गई तो क्या हुआ, अब था पहले राजा कौन था, आत्मा राजा थी, मन उसका मंत्री था, बुद्धि भी बुद्धि भी मतलब मंत्री थी, है ना, संस्कार भी 3 मंत्री थे ना आत्मा के, तो तीनों कहना मानते थे, पर मन सबसे बड़ा था उसमें से, है ना, और मन का कनेक्शन किसके साथ था, 5 कर्मेंद्रियों से होता है, मन का कनेक्शन 5 कर्मेंद्रियों से होता है, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा से होता है, वो ये कहां देखते हैं? बाहर देखते हैं। कहां से जुड़े हैं हम? आंख कहां देखती है? अंदर देखती है, बाहर देखती है? कान नाक कहां सूंघता है? अंदर सूंघता है, बाहर सूंघता है? बाहर सूंघता है ना, अंदर की बदबू उसको नहीं आती, बाहर की बदबू आती है। खुशबू भी बाहर की आती है, अंदर की खुशबू नहीं आएगी नाक को। बाहर की आती है, अंदर की आती है? बाहर की। कान बाहर की सुनता है, अंदर की सुनता है? मुंह अंदर की सुनता है? कान अंदर की नहीं सुनता है? है जी, क्या कह रहे? अच्छा, ज्यादातर बाहर की सुनता है ना। मुंह भी, हम मुंह भी क्या अपनी जीभ को खा जाता है? मुंह कभी देखा आपने? जीभ है ना, नरम नरम है ना, इसको खाता है कभी? क्या खाना खाता है ना, मुंह से भी हम खाना खा सकते हैं ना। तो बाहर का सब कुछ मतलब कंटेक्ट रहता है मन से ना। तो ये जो है हमारा बाहर का कनेक्शन, ये बाहर से कनेक्टेड है। तो मन हमारा पांचों बुद्धि अंदर आत्मा से कनेक्टेड है, और मन जो है किससे कनेक्टेड है? पांचों कर्मेंद्रियों से कनेक्टेड है। जब आत्मा की एनर्जी सातों, जिसे मैं इसलिए मैं त्याग तपस्या सेवा में ये बात कर रहा हूं ताकि आप समझ सके हमें क्या हमारे पास था और क्या छोड़ना है, अगर वापिस हमें वापिस देवी देवता बनना है तो, है ना। क्योंकि आप इस पर इस तरह से अच्छा समझ पाएंगे, अगर हम दूसरी तरह से जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्यों छोड़े हम, क्या आवश्यकता छोड़ने की, है ना। क्योंकि जाना तो साइकिल तो वापस फिरने वाली है ना, चक्कर तो फिरने वाला है, हम चाहे ना चाहे, समय वो वाला आ गया है, अब चक्कर के फिरने का समय है ना। तो ये जो है अभी हम ये चक्कर लगा रहे हैं ना। तो अभी जो है जब द्वापर युग आया, द्वापर का शुरुआत हुई, तो हमारी एनर्जी कितनी हो गई थी? 50 थी। जिस दिन 49 हुई क्या हुआ? उस समय तक हमारे संकल्प काम करते थे। संकल्प माना हमारा पुष्पक विमान भी कैसे उड़ता था? संकल्प से उड़ता था कि हम कोई बैठ के उसमें बटन दबाते थे? संकल्प से उड़ता था, है ना। संकल्प किया और उड़ा, संकल्प के नीचे चलो नीचे आ गया, है ना। तो संकल्प से चलता था सारा काम। तो उस समय क्या हुआ कि जब ऐसी एनर्जी कम हुई तो 49% हुई, तो मन क्या हुआ? ऑटोमेटिक मन की एनर्जी 51% हो गई। जैसे उसने एनर्जी, आत्मा की एनर्जी कम हुई, मन की एनर्जी 51% हो गई, और मन ने क्या देखना शुरू कर दिया? आंखों से। सत्युग में, त्रेता में हम देह को देखते नहीं थे, हम आत्मा को देखते थे, और हमारा गुणों में व्यवहार था, शरीर हमें दिखाई देता नहीं था। जो हमारा आभा मंडल था वो बहुत बड़ा था, हमारा गुणों में ही एक दूसरे के गुण, जैसे ना किसी का चेहरा ही, जैसे देवी देवताओं का चेहरा ही कितना सुंदर होता है ना, तो गुणों में मतलब वो रूहानियत दिखाई देते हैं चेहरों में, व्यवहार में सभ्यता दिखाई देती थी, उसी में हमारा लेन देन था। शरीर पे हमारी दृष्टि जाती नहीं थी, शरीर दिखाई नहीं देता था। जैसे ही एनर्जी 50% हुई, हमारा जो ऑरा था ना, आभा मंडल कहां गया? स्किन के लेवल पे आ गया। कहां लेवल पे आ गया? पहले ऑरा बहुत बड़ा था, फिर क्या हुआ? आभा मंडल कहां आ गया? स्किन के लेवल पे आ गया। जैसे स्किन के लेवल पे आया तो क्या हुआ, हमें क्या दिखाई देने लगा? इसकी नाक ऐसी है, ऐसा है, ऐसा है, इसकी मुंह ऐसा है, इसका ये ऐसा है, ये ऐसा है। गुणों की बजाय कहां चली गई हमारी दृष्टि? शरीर पे चली गई। तो मन देह, पहले देह की तरह देखा तो क्या उनका विकार आ गया? काम विकार आ गया। पहले देह भान आया, बॉडी कॉन्शियसनेस आई, तो काम विकार आ गया। फिर क्रोध आ गया, किसी ने उसकी तरफ और देख लिया तो क्रोध आ गया, ठीक है। फिर आ गया लोभ, अब उसके लिए जो उसकी इच्छा है, जिसको आपने पसंद किया, उसके लिए फिर लोभ आ गया, इसको ये दूं, इसको ये दूं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे पवित्रता कम होती है तो क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, कमी पड़ने लगती है। सत्य में भरपूर थे, फिर कमी पड़ने लगे, तो लोभ आया, और फिर जो बच्चे हुए उनसे मुंह आया, और फिर क्या हुआ? जो हमने इकट्ठा कर लिया था, जो हमारे अंदर हो गया था, हमारे पास आ गया था, उसका अहंकार आ गया। तो पांचों विकार कैसे आए? देहवान से पैदा हुए। किससे पैदा हुए? देहवान से पैदा हुए। और जैसे ही मतलब, तो जैसे ही मन, अब क्या बन गया? मन राजा बन गया, मन राजा बन गया ना अब, क्योंकि हम बाहर देखने लगे, हमारा बाहर लोगों से कांटेक्ट बनने लगा, बाहर लोगों की तरफ चीजें इकट्ठी करना, व्यक्तियों को अपने पास, व्यक्ति और व्यवहार में बुद्धि जाने लगी, है ना। और उसको ही हमारी बुद्धि उसी में अट्रैक्शन में फंस गई। तो अब हम क्या बन गए? देवी देवता से। मन शब्द से मनुष्य शब्द आया, मन उष्य मतलब मन के वश में, ठीक है। अब हम क्या बन गए, मनुष्य, है ना। तो पांचों विकार अंदर आ गए, तो ये पांच विकार थे जो मतलब जिससे हमारी प्रॉब्लम हुई। फिर क्या हुआ, अब पांच विकार आए तो अब धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगी बॉडी में। पहले तो बॉडी में भी मन बुद्धि संस्कार में एनर्जी भरपूर थी, आंखों में भरपूर थी, सभी में भरपूर थी, एक एक सेल हमारी कंचन काया थी, है ना, सब में। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, आज भी छोटा बच्चा होता कैसे उसकी चमकती है ना स्किन, पैर भी गंदे हो ना, गंदे उसके पैर उसके कैसे होते हैं, काला भी हो तो अच्छा लगता है ना, उसमें चमक होती है पैर में भी ना, पैर में हाथों में चमक होती है, मतलब उसको देखते ही खुशी आती है ना। ऐसे हम भी थे कि तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगी, एनर्जी पैरों में कम होने लगी, हमारी हार्ट, हमारी बॉडी की 80,000 अरब कोशिकाएं सारी कैसे चल रही हैं, ये सात एनर्जी की वजह से चल रही हैं। अगर आत्मा निकल जाए तो कुछ भी ना चले, तो आत्मा सात एनर्जी से इस बॉडी को चलाती है। अब एनर्जी कम पड़ने लगी तो शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो गई, कोई ना कोई अंग में, कभी हार्ट में, कभी कहीं कुछ ना कुछ। पहले पहले बड़े बड़े राजाओं को बीमारियां होती थी इसका, है ना, आम पब्लिक को नहीं होती थी। तो धीरे धीरे, क्योंकि पहले पहले बीमारी कहां आई, सबसे पहले गिरे कौन, जो नंबर वन थे वही गिरे, सबसे पहले गिरते हैं ना। तो पहले राजाओं में बीमारियां आती थी, आम पब्लिक में नहीं आती थी, है ना। फिर धीरे धीरे प्रजा भी गिरने लगी, है ना, प्रजा गिरने लगी तो धीरे धीरे सब गिरने लगे, है ना। गिरते 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 क्या हुआ, आपको पता भाषा में, ये टॉपिक नहीं है मेरा आज, नहीं तो मैं टॉपिक पे आता तो बहुत सारी बातें सुनाता, है ना। तो कैसे हमारे पुष्प विमान उड़ा नहीं, फिर हम बाहर घूमने गए थे तो कैसे पुष्प विमान वहीं के वहीं रह गए, फिर डिस्ट्रक्शन हो गया, है ना। फिर डिस्ट्रक्शन हुआ तो हम वहीं के वहीं धरती के टुकड़े हो गए अलग अलग, है ना, खंड बन गए अलग अलग, तो वहीं रह गए। अब जब कोई गलत काम करते तो क्या होता है, फिर हम कैसी बातें करते हैं आपस में, कोड वर्ड में बातें करते हैं ना, कोड वर्ड होते हैं ना, लव लेटर भी कैसे लिखते हैं, दूसरा पढ़े तो उसको समझ नहीं आया, है ना, तो उससे भाषाएं बनी, है ना। जैसे आपको लिखना हो ना, जैसे मान लीजिए लिखना हो किसी का नाम, कुछ बात लिखनी हो, अब मान लीजिए मेरा नाम सतीश है, तो सतीश की बजाय क्या होगा, एस के बाद दो अक्षर कौन से आते हैं, है, एस टी यू वी, तो वी से शुरू करेंगे वी, है ना। फिर ए के बाद क्या आता है, सी, है ना, दो अक्षर के बाद कौन आएगा, डी आएगा ना, वी डी ऐसे करके आएगा। अब पढ़ेगा तो उसको डिकोड करना पड़ेगा, दोबारा दो अक्षर पीछे जाओ तो क्या बनेगा, फिर असली नाम पता लगेगा कि क्या नाम है, क्या लिखा है ना। ऐसे लैंग्वेज बनी, सबने अलग अलग बना दी, मन में डर आया ना, जब भी काम गलत काम करते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में डर पैदा होता है ना। तो इस तरह से नई लैंग्वेज, अब रशियन लैंग्वेज देखो तो रशियन लैंग्वेज कैसी है, हम रशिया में गए ना, तो हम रशिया में है तो इंग्लिश ही, कि तो आप पढ़ो तो समझ नहीं आएगी, है तो इंग्लिश, मेरा नाम लिखा होगा तो मेरे को खुद ही समझ आएगा कि क्या लिखा हुआ है ना। तो मतलब वो नाम ऐसे बदल, ऐसे लैंग्वेज बदल गई, हिंदी का भी ऐसी कर दिया, संस्कृत का भी ऐसी कर दिया, उससे फिर लैंग्वेज और बहुत सारी निकल गई, है ना। तो इस तरह से जहां जहां जो जो लोग थे ना, एक एक ग्रुप जहां जहां रह गए, उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज बना ली, ताकि माँ बाप को पता न लगे, डर भले यहां से बहुत दूर थे किंतु उन्होंने डर के मारे क्या किया, अपनी अपनी, ये मैं बाद में कभी ऐसी क्लास बाद में कराऊंगा, अभी तो ये टॉपिक नहीं है ना, है ना। तो कैसे कैसे द्वापर युग में कैसे सब शुरू हुआ ना, तो वो सब बात की बात है, खैर हमारा टॉपिक ये नहीं है। तो फिर जो है हम गिरे, बीमारी आनी शुरू हो गई, बीमारी आई तो पहले देहभान आया, फिर देह के संबंध आ गए, फिर देह के स्वभाव, ये जो है देह के स्वभाव है, ये पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये देहभान के स्वभाव मतलब नेचर है। जैसे ही देहभान आता है ये काम विकार आ जाता है, देह को देखते ही, देहभान आते ही मेरा अपना देहभान मेरे अंदर आएगा, बॉडी अपनी बॉडी को देखूंगा तो काम विकार आ जाएगा, किसी और को देखेंगे काम विकार आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह अहंकार आएगा। और फिर देहभान की आदतें भी होती हैं, कुछ देहभान की आदतें कौन सी है, जिसे संस्कार भी कहते हैं, वो आलस्य है। जैसे देहभान आया फिर हमें आलस आने लगा, सत्युग में हम आलसी थे क्या, आलसी नहीं थे, थे आलस, सो रहे हैं, सोए जा रहे हैं, आठ बजे तक ऐसा होता था क्या, 9 बजे तक सोए जा रहे हैं, है ना, अलबेलेपन था क्या, अलबेलापन था क्या, अलबेलापन नहीं था, और फिर अलबेलापन आ गया। फिर एक प्रॉब्लम क्या थी कि हम सत्युग में देखो एक निशानी है, सतो प्रधान आत्मा की निशानी क्या है, और रजो और तमो प्रधान आत्मा की निशानी क्या है, सतो प्रधान आत्मा को सबके गुण दिखाई देते हैं, जैसे उनकी उनकी दृष्टि होती है हंस, हंस दृष्टि होती है, हंस माना जो श्वान होता है ना, उसके सामने अगर 99 मोती कीड़े डाल दो और बीच में एक मोती डाल दो उसको क्या दिखाई देगा? सिर्फ मोती दिखाई देगा, कीड़े नजर नहीं आएंगे। और तमो प्रधान आत्मा के सामने, आज के आदमी के सामने, उसमें 99 मोती डाल दो, बीच में एक कीड़ा डाल दो, तो क्या दिखाई देगा उसको? बगले को क्या दिखाई देता है? कीड़ा दिखाई देता है। आज के देखो, पति पत्नी में देखो, या आपस में भी देखो, आपस में हम रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमें क्या दिखाई देता है? जो एक कमी हो दिखाई देती है ना, एक कमी होती है वो दिखाई देती है, बस 90 गुण दिखाई नहीं देते, 10 अवगुण दिखाई देते हैं, है ना। तो ये निशानी है, फिर हमें एक दूसरे के अवगुण दिखाई देने लगे, इसमें एक खराबी, इसमें एक खराबी, इसमें एक खराबी, इसमें एक खराबी, तो ये हमारी दृष्टि ऐसी अवगुण दृष्टि बन गई, दोष दृष्टि बन गई, है ना। फिर जिसने हमारे प्रति कुछ गलत कर दिया, उसके साथ बदला लेने की भावना आ गई, फिर एक दूसरे पर शक होने लगा, परिवारों में भाई भाई में शक होने लगा, ये मेरा ऐसा कर लेगा, वो ऐसा कर लेगा, वो साथ वाला राजा मेरा काबू कर लेगा, मैं उसको पहले ही मार देता हूं, चढ़ाई करने लगे दूसरे को, नहीं ये मेरा दुश्मन है, इसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, ऐसा होने लगा ना, हुआ ना, सुना होगा ना आपने। तो ऐसे हमने शुरू किया, फिर शक अनुमान आया, चिंता आ गई, डर आ गया, गलत काम करते डर तो आएगा, जल्दीबाजी प्रेशर में रहने लगे और ईर्ष्या द्वेष शुरू हो गया। तो ये देहवान की आदतें आ गई, और देह के पदार्थ, जो देह के पदार्थ है वो उसमें भी हमारी बुद्धि चली गई। तो ये बुद्धि में, अभी तो पहले मन में आई, फिर बुद्धि में चली गई, बुद्धि में दिल में चली गई, अब वो दिल में बातें चली गई, अब हमारे दिल में ये चीज चली गई, क्या क्या चीज चली गई? एक तो देह का भान चला गया, देह के संबंधों का भान चला गया, जो लास्ट टाइम की मुरली थी, लौकिक अलौकिक संबंध, बाबा के बच्चे बने तो क्या हुआ, लौकिक संबंध कम हो गए, कौन से ज्यादा हो गए, अब अलौकिक संबंध वाले बुद्धि में आ गए, दिल में आ गए, है ना। तो वो छूटे, दूसरे आ गए, लोहे की जंजीर छूटी तो कौन सी जंजीर आ गई, सोने की जंजीर आ गई, है ना। और फिर देवान के क्या हुआ, स्वभाव आ गया, स्वभाव ये पांच विकार है, देवान के संस्कार आ गए और देवान की पदार्थ आ गए, ठीक है। अब ये चारों चीजें हमारे कॉन्शियसनेस में, दिल में आ गई। देखो बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट होते हैं, अब मन के भी चार एस्पेक्ट होते हैं, पार्ट नहीं होते, क्योंकि मन और बुद्धि सूक्ष्म है ना, स्थूल तो नहीं है। तो मन बुद्धि का एस्पेक्ट है, पहला है दिल, कॉन्शियसनेस, और उस दिल में क्या है, दिल में अगर सातों एनर्जी भरपूर है तो हमारी हमारा विवेक, विजडम, उसमें सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है, उसे विवेक कहते हैं, सत्य को परखने की शक्ति को विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं, और सत्य निर्णय करने की शक्ति को हम जजमेंट पावर, हमारी सत्य को निर्णय करने की शक्ति, सत्य निर्णय करें, ये हमारा बुद्धि हो गई, दिव्य बुद्धि हो गई। और फिर उसके बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड, चित्त होता है, चित्त जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो ये चारों चीजें बुद्धि के एस्पेक्ट हैं। अगर आपकी दिल में सत्य है तो विवेक सत्य को परख लेगा, सत्य माना आपके दिल में ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान को मैं सार रूप में ABCD कहता हूं, ज्ञान में चार बातें मुख्य है, कौन कौन सी है, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, संबंध और डी फॉर ड्रामा। तो चार बातें आपके मुख्य हैं, अगर ज्ञान आपकी बुद्धि में है, दिल में है, तो आपकी बुद्धि आप ही पवित्र है, शांति है, रूहानी प्यार है, अतीन्द्रिय सुख है, आनंद है, शक्तियां हैं, है ना, और सातों एनर्जी का बैलेंस भी है। तो अगर दिल में सातों एनर्जी है तो आपका विवेक अपने आप कैसा हो जाएगा, सत्य को परखने लगता है, ईश्वर जैसा विवेक हो जाता है, आपकी निर्णय शक्ति दिव्य हो जाती है, डिवाइन हो जाती है, चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय हो जाता है, ठीक है। और आपकी जो अब जैसे 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 स्थिति, चित्त की स्थिति है, चित्त में अगर आनंद है, एकाग्रता है, शांति है, तो आपकी मेमोरी, मेमोरी में ना आपका जो मन है, मन के चार एस्पेक्ट है, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो हमारी जो स्मृति की फाइलें हैं, मेमोरी की जो फाइलें हैं, किस आधार पे होती हैं, चित्त से कनेक्शन होता है उसका, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन होता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड मेरा शांत है, एकाग्र, आनंदमय है, तो हमारी जो फाइलें हैं स्मृति की, जो फाइल स्मृति में कौन कौन सी फाइलें हैं, हमारे लास्ट कल्प के संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की फाइल भी है, लास्ट कल्प के फरिश्ता स्वरूप की फाइल भी है, और लास्ट कल्प के इस कल्प के देवता स्वरूप की फाइल भी है, ठीक है। तो संपूर्ण पावन तत्व प्रधान जो हमारी ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप की फाइलें खुल जाए, अपने आप ही खुल जाती। और जब ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप देवता स्वरूप की फाइलें खुलती हैं, तो ब्राह्मण का मतलब क्या है? चलो मैं उसमें नहीं जाता हूं, हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो ब्राह्मण फरिश्ता उससे हमारी वृत्ति क्या होगी? ऑटोमेटिक रूहानी हो जाती है, और रूहानी वृत्ति से रूहानी वायुमंडल हो जाता है, और उससे ऑटोमेटिक हमारे वायु सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना हो जाती है, और शुभ भावना शुभकामना होती है तो क्या होता है? तो हम बात कर रहे थे ना कैसे, तो ये जो है चार चीजें हैं जो मतलब जो हमारे अंदर हमारी कॉन्शियसनेस में चली गई है, देह भान का बंधन, देह के संबंधों का बंधन, देह भान के संबंध है, संबंध देह भान के हैं, ठीक है, जितने भी हमारे जो संबंध लौकिक संबंध है, अलौकिक संबंध भी देह भान से है। अलौकिक संबंध में क्यों फंस जाते हैं? किसी से हमारी आवश्यकता, ये भाई बड़ा है, ये बहन जी दीदी बड़ी है, ये बड़ा भाई, इससे हमारी ये आवश्यकता, ये हमें मिल जाएगा, हमें साधन मिल जाएगा, हमें इनसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना, राइट। तो ये भी एक बंधन बन जाता है ना, है ना। और फिर देह के स्वभाव, है ना, मैंने पांच विकारों का बताया, इसके 10 बच्चे हैं, उनका भी बंधन होता है ना। और फिर देह के पदार्थ, जो भी हम एक चीज खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कपड़ों से भी कितनी अटैचमेंट होती है। कपड़ों पर कुछ गिर जाए तो क्या होता है? अगर कपड़ों पे कहीं दाग लग गया तो क्या करेंगे? यहां दाग लग गया तो क्या करेंगे? यूं ढके बैठेंगे, है ना, नहीं कि कहीं वो देखने ले को, है ना, नहीं। कुछ भी हो जाए तो बाल भी थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो तो क्या करेंगे? बार बार यूं करते रहेंगे, है ना। भाई कितना हमारा देहभान का बंधन, ये तो है ही, पदार्थों का कितना बंधन होता है। कार भी खड़ी होगी बाहर तो देखे कोई कोई बार बार देखने जाएंगे, कोई इसको कुछ हो तो नहीं गया, किसने कुछ मार तो नहीं दिया, है ना। घर में पैसे होंगे तो रखे होंगे ना अलमारी में, रोज रोज चेक करेंगे ठीक रखे हैं, है ना। तो कितनी हमारी बुद्धि, हमारी कॉन्शियसनेस में वो बातें घुस गई हैं। अब अगर जिसकी कॉन्शियसनेस में ये बातें घुसी हुई है तो उसका क्या हाल होगा मुझे बताओ? उसका विवेक काम करेगा? जिसके दिल में ये चला गया, जिस दिल में चार बातें चली गई, उसका विवेक कंफ्यूज रहता है, वो सत्य को परख नहीं सकता, वो झूठ को सत्य परख लेता है। झूठ है ना, झूठ किसे कहते हैं? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य माना जो कभी भी बदल, जो कभी भी मरता नहीं है, अविनाशी है, जो अविनाशी है, देह अविनाशी के विनाशी है, देह के संबंध विनाशी या अविनाशी है, देह भान के जो विकार है, पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, विनाशी है अविनाशी है? साथ में जाएंगे, पिटाई खा के यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। और देखे आलस अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालना, बदलने की भावना, शक अनुमान, चिंता भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष, साथ में जाएंगे, यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, सबको माफ करके जाना पड़ेगा, नहीं। और देखे पदार्थ थोड़े तो ले जाना साथ में ना, 100 रुपए तो रास्ते में काम आएंगे ना, साइड में कहीं लगा लेना, आत्मा के साइड में चिपका लेना, नहीं नहीं साथ में जाएगा क्या? तो इनमें से कोई चीज हमारे, ये अविनाशी है नहीं ना, ये तो खत्म हो, एटर्नल नहीं ना, आज है कल नहीं है। और दूसरी सत्य की परिभाषा है, कभी भी सत्य कभी भी बदलता नहीं है, ये बदलते रहते हैं, चारों चीज बदलती रहती, नहीं बदलती। तो ये चारों चीजें जो है पर हमारी कॉन्शियसनेस घुस गई, इसलिए हमारा विवेक काम नहीं करता है। कितना भी ज्ञान सुनो, कितना भी सुनो, फिर क्या होता है? बाबा कहते ना, यहां मुरली सुनने आते हैं, मुरली में बहुत नशा चढ़ता है, और फिर क्या होता है? जैसे बाहर घर की तरफ मुंह करते हैं, फिर क्या होता है? यहां तो बहुत नशा चढ़ेगा, है ना, और बाहर जाते ही वो गायब हो जाता है नशा। फिर देखा बेटे को, देखा बुद्धि बेटे में चली गई, बेटी को देखा बुद्धि उसमें चली गई, है ना, नहीं। कार को देखा, अरे कार किसने किसने साइड मार दी, इसमें निशान किसने मार दिया, फिर बुद्धि उसमें चली गई। घर के बाहर, घर के जैसे जाते ना बाहर, सेंटर के बाहर गए, कार बाहर खड़ी थी, किसने कुछ मार दिया, थोड़ा सा पेन मार दिया, पेन से ना, या कुछ चीज खरोच, थोड़ी खरोच आ गई, तो क्या होगा? उसका विचार चला ना। तो ये जो चीजें हैं, इसलिए हमें क्या करना है? तो ये चार चीजें, हमारा विवेक कंफ्यूज हो गया, और बुद्धि निर्णय शक्ति क्या हो गई? भ्रष्ट हो गई, और चित्त क्या हो गया? अशांत और चंचल हो गया। अब कैसी 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 हमारी स्मृति कौन सी जागृत होंगी? अगर चित्त मेरा चंचल हो गया, अशांत हो गया, अब स्मृतियां कौन सी जागृत होती हैं? कौन सी वाली? जो दिल में वो चित्त में, है ना, कहते सच्चित आनंद स्वरूप, दिल में सत्य है, चित्त आनंद स्वरूप है, और दिल में असत्य है तो क्या चित्त कैसा हो गया? बेचैन हो गया। अब बेचैन हुआ तो स्मृति कौन सी जागृत हो गई? आसुरी आसुरी स्मृतियां जागृत हो गई, विकारों की स्मृति जागृत, डर की स्मृति जागृत हो, चिंता की स्मृति जागृत हो गई। और फिर क्या होगा? फिर वृत्ति कैसी हो जाएगी? वृत्ति कैसी हो जाएगी? देहिक वृत्ति हो जाएगी, लगाव झुकाव प्रभाव और टकराव वाली। जो लाश की मुरली थी ना, बाबा ने जो चलाई ना, किसी के प्रति तो बहुत लगाव आएगा, किसी उसकी तरह उसी तरह बुद्धि उस तरह झुकी रहेगी, किसी के प्रभाव में आ जाएंगे, अलौकिक संबंधों के प्रभाव में आ जाएंगे, है ना, या किसी और बड़ा व्यक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे, जैसा वो कहेगा ना वैसा ही करते रहेंगे। और फिर टकराव, किसी से टकराव हो जाएगा। तो वृत्ति हमारी लगाव झुकाव प्रभाव टकराव वाली हो जाएगी। और भावना कैसे हो जाएगी? जिसके प्रति लगाव है झुकाव है वो उसके लिए तो जान भी दे देंगे, और जिससे टकराव है उसके लिए उसको एक पैसा भी नहीं देंगे, है ना। जैसे होता है ना, अभी देखो बच्चे माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं, सब कुछ बेच के सब कुछ करके भी उसका इलाज कराते हैं, नहीं कराते हैं? छुट्टी वुट्टी तो छोड़ो, छुट्टी की तो बात ही नहीं है, छुट्टी भी छुट्टी गिनते ही नहीं कितनी छुट्टी हो गई बच्चा बीमार है तो। और जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते, क्या होता है? हाँ, वो कुछ बेच के माँ बाप का इलाज कराएंगे क्या? हाँ, कराते माँ बाप का इलाज? नहीं कराते ना, कराते नहीं ना। मैं देखा ना, हमारे पास दाखिल होते हैं पेशेंट, स्ट्रोक लेके आते हैं, पिताजी को स्ट्रोक हो गया, माँ को स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस स्ट्रोक, माना पैरालिसिस का अटैक आ गया, तो बच्चे 5-7 दिन में थक जाते हैं, डॉक्टर साहब ये तो ठीक ही नहीं हो रहे, ये तो ठीक ही नहीं हो रहे, कुछ चांस भी है ठीक होने का? नहीं होने का। अरे भाई, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कभी डॉक्टर को कहा नहीं, इतना सा चांस था तो भी डॉक्टर ने कहा डॉक्टर साहब ट्राई करो, मैं सब कुछ बेच दूंगा, सब कुछ हम सब कुछ लगा देंगे, आप ठीक करो कैसे भी करो, है ना। और बच्चे क्या कहेंगे माँ बाप डॉक्टर को? डॉक्टर साहब इतनी छुट्टियां कहां से लूं, इतने पैसे ही नहीं, पैसे खत्म हो गए, बदल जाते हैं ना। तो जिनसे लगाव झुकाव हमने बच्चों से हो गया, अभी माँ बाप से कम हो गया, तो अभी माँ बाप के प्रति क्या भावना नहीं रही है ना? तो भावना भी उसी अनुसार खराब हो जाती है और संकल्प भी वैसे चलते हैं, ठीक। तो ये जो है आज की स्थिति है। अब आप तपस्या करने के लिए आ गए हैं ना, भट्टी करने के लिए, योग भट्टी करने के लिए, ठीक है। योग भट्टी का मतलब क्या है, तपस्या का मतलब क्या है? सिर्फ एक संकल्प हो, तपस्या माना सिर्फ एक संकल्प हो। कोई कौन संकल्प? मेरा बाबा, है ना। अगर मेरा बाबा शब्द आ गया तो क्या हो गया? योग शक्तिशाली हो गया, पावरफुल हो गया। तो तपस्या माना सारे संकल्प खत्म होकर के अनेक का, अनेक को किसमें परिवर्तन कर दो? मेरा बाबा में, अनेक को खत्म करके मेरा बाबा आ जाए। एक दिन वरदान था ना, कुछ दिन पहले, याद है वरदान वाला? तो वरदान में ये था। तो मतलब एक ये है तपस्या। तो जब तक हम इनका त्याग नहीं करेंगे, किसका त्याग? देहभान का त्याग पहला, फिर देह के संबंधों का त्याग, सर्व संबंधों का त्याग, और फिर देह के स्वभाव संस्कार का त्याग, और देह के पदार्थों का त्याग, ये चार चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अभी जो मुरली चली ना, आपने डिटेल में सुनी है, तो अपने आप से कैसे कैसे त्याग करें? मैं तो दिल का चित्र बनाता हूं, जब भी बोर्ड पे चित्र बनाता हूं ना जब मैं, तो मैं तो एक एक पकड़ पकड़ के, हम कहते हैं पकड़ पकड़ के एक को निकालते जाओ। पहले तो अपने देह को निकालो, फिर माँ को निकालो, बुद्धि में बैठी होती ना माँ, दिल में बैठी होती, पिताजी को निकालो, भाई को निकालो, बहन को निकालो, है ना, है ना, पति को निकालो, पत्नी को निकालो, बच्चों को निकालो, बिजनेस को निकालो, है ना, कार है कार को निकालो, जो अपना बैंक बैलेंस है उसको निकालो, बुद्धि से घर में रखो, ऐसा नहीं कि बैंक से के निकाल दो, पर बैंक में तो रहे, किंतु बुद्धि से निकालो ना उसको, है ना। घर में भी बच्चों को तो रखना है, घर से निकालना नहीं है, बुद्धि से निकालने की बात, दिल से निकालने की बात, है ना। तो ऐसे से निकाल देते हैं कि तो प्रैक्टिकली कैसे होता है? प्रैक्टिकली चलते फिरते अपने आप से बात करनी होती है। अपने आप से बात करो, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, सत्य क्या है मेरा? ये देह तो आज है कल नहीं है, है ना, कल कुछ हो जाएगा, ये तो रोज बदल रही है ना। तो मैं कौन हूं, मैं ये मैं बाप हूं क्या, मैं माँ हूं क्या, मैं पति हूं क्या, पत्नी हूं क्या, डॉक्टर हूं क्या, अभी 8 घंटा 6 घंटा डॉक्टर हूं, घर में जाके डॉक्टर हूं क्या, हूं क्या? घर में डॉक्टर नहीं हूं, मैं अभी बाप हूं, घर में हूं तो बाप हूं एक बच्चे का, बच्चा जब तक है बाप हूं, बच्चा नौकरी पे चला गया किसका बाप हूं? किसी का बाप नहीं हूं ना। तो मतलब अपने आप से ये बात करते करते चलते फिरते उठते कौन चला रहा है, कौन कौन शरीर को चला रहा है? ये तो लेबल है, जो भी रोल मिला है वो तो लेबल है। अपने आप से हर काम, ब्रश कर रहे हो तो ब्रश करते क्या, कभी देखा मुर्दे को ब्रश करते देखा आपने? मुर्दा कभी ब्रश करता है क्या? मुर्दा कभी शेव करता है क्या? तो मैं तो ये भी अपने आप पे टेंशन रखता हूं, जब ब्रश कर रहा होता हूं तो अपने आप से बात करता हूं, मैं आत्मा ब्रश कर रही हूं है ना, मैं आत्मा शेव कर रही हूं। नहा रहे हैं तो कौन कौन नहा रहा है? मुर्दे कभी नहाते हैं क्या? तो अपने आप से मैं आत्मा नहा रही हूं। जो भी काम करें, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते बार बार ये अभ्यास करना चाहिए। देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन की परिभाषा क्या है? बीइंग द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ एंड रियलाइजिंग द ट्रूथ। सत्य बनना ही राजयोग मेडिटेशन है, सत्य को जीना ही राजयोग मेडिटेशन है, और सत्य को सत्य अनुभव करते रहना ही राजयोग मेडिटेशन है। ठीक है, तो सत्य हम क्या लेते हैं? सांस हम आधा घंटा सुबह शाम लेते हैं कि सारा दिन लेते हैं? कई लोग कहते हैं आधा घंटा अमृत वेला किया ना हमने और शाम को आधा घंटा योग किया ना, राजयोग हो गया है ना। तो ये राजयोग नहीं है, राजयोग का मतलब है कि सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक हम सांस 24 घंटा लेते हैं ना, तो 24 घंटा हमारा मेडिटेशन। श्वास चलते फिरते उठते हर समय हमें ये फील करते रहो, मैं आत्मा यहां बैठ के चला रही हूं, मैं आत्मा यहां बैठ के देख रही हूं, मैं आत्मा यहां बैठ के सुन रही हूं, मैं आत्मा यहां बैठ के बोल रही हूं, खा रही हूं, मैं आत्मा हार्ट को चला रही हूं, मैं आत्मा लंग्स को। ये अवेयरनेस, सत्य की अवेयरनेस, ट्रूथ की अवेयरनेस, जब हम हर समय हमें सत्य की अवेयरनेस रहेगी तो ही हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंट में ना, तो ही हम समस्या के समय इस शक्ति को यूज कर पाएंगे। अगर अवेयरनेस ही नहीं होगी, मेरी जेब में कागज पड़े हैं, मुरली पड़ी है, इसके बीच में 500 का नोट पड़ा हुआ है ना, है नहीं ऐसे तो क्या आप सोचो है, मैं रखता ही नहीं कभी पैसे अपनी जेब में। इस मुरली है जैसे, तो ये चार्ट है मेरा, इसके बीच में 500 का नोट पड़ा है और मेरे को प्यास लगी है, बाजार में से जा रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं मेरी जेब में 500 का नोट पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? किसी को मुफ्त में पानी पिलाएगा कोई? वही नहीं पिलाएगा। तो मैं जाके कम से कम पानी कब पी सकता हूं? याद है तो मेरी जेब में 500 रुपए तभी तो कर सकता हूं ना। अगर मेरे को याद है मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरे साथ है, ABCD मुझे याद है, आज की मुरली के पॉइंट्स मुझे याद है, तो ही तो मैं उसका अभ्यास उसको यूज कर पाऊंगा ना। तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं, समस्या के समय घबरा जाएंगे है ना। तो हमें क्या करना है, ये चार चीजों को त्याग कैसे कर पाएंगे? चलते फिरते अभ्यास करना पड़ेगा। मेरा संबंध किसके साथ है? आज मेरी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, भाई बहन है, दोस्त हैं, अलौकिक संबंध भी है, टीचर है और दूसरे लोग हैं, वो भी संबंध कितने दिन के लिए है? मेरे जो है, मेरे को मेरा संबंध, सदा संबंध किसके साथ है? सरल संबंध किसके साथ है? उसको हम बार बार चलते फिरते अभ्यास करें, अनुभव करें। बाबा कितने दूर है हमसे? अच्छा, अमृतसर यहां से आपका, अमृतसर में आपका घर है, आप अपने यहां से बैठे बैठे अपने ड्राइंग रूम में जा सकते हो? हाँ? जा सकते हैं ना। कितनी दूर है यहां से? हाँ? सोचा और पहुंचा नहीं, अपनी मां के पास जा सकते हो कितनी देर में? एक सेकेंड, सोचा और पहुंचा ना। ऐसे ही बाबा हमसे कितनी दूर है? सोचा और पहुंचा नहीं, बाबा सोचा और बाबा आ गया, बस ना, बुद्धि में आ गया। तो ऐसा हमारा उसके साथ चलते फिरते और हर संबंध का अनुभव होना चाहिए। नो संबंध का तो मुख्य अनुभव होना चाहिए। नो संबंध कौन कौन से? एक मां का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु बना बड़ा भाई का संबंध, सखा का संबंध, साजन का संबंध और बच्चे का संबंध। बाकी तो हर संबंध अनुभव करें। तो हम चलते फिरते मेडिटेशन क्या करते हैं, अभी हम कैसे करते हैं, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं अपने आप से कैसे चलते फिरते अपने आप को अनुभव करता हूं, मैं स्थूल देह नहीं, अपने आप से चलते फिरते ऐसे बात करना, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य, चैतन्य सदा जागती ज्योत, अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा यहां हूं बैठी हूं, हाइपोथैलेमस के बीच में, दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम, ये दोनों भिट्टू के मध्य और दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर 3 इंच नीचे वहां मैं आत्मा स्थित हूं। और मुझे आत्मा से 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं है ना, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं कौन सी, ज्ञान। ज्ञान क्या है, सत्य की समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ। उसमें पहली बात तो ए है, मैं आत्मा हूं। दूसरा, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य, परम माना जो सदा जागती ज्योत है, सदा ही सातों गुणों से भरपूर है। हम क्या है, चैतन्य माना 7 गुण, चैतन्य कब है आत्मा में, जब 7 गुणों से भरपूर है, चेतन है। तो अभी मैं चैतन्य हूं, पहले क्या थी, मैं चैतन्य नहीं थी। जब मैं देह विमान में हूं तो चैतन्य हूं क्या, कबर दाखिल हूं, तब आत्मा क्या है, कबर दाखिल है, मैं देह भान के अंदर ढकी हुई है। और अब मैं बाबा का ज्ञान मिला तो क्या हो गया, मैं आत्मा कैसी हो गई, चैतन्य। शिव बाबा कैसा है, परम चैतन्य, सदाई चैतन्य है ना, परम माना सदाई चैतन्य है। और फिर परम ज्योति, उसकी ज्योति कभी कम ज्यादा नहीं होती, हमारी ज्योति कम ज्यादा होती है ना। और परम पिता परमात्मा शिव है ना, उनकी संतान हूं। और शिव बाबा कौन है, शिव बाबा 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है, वो सदा सत्य है। सदा सत्य का, सत्य का मतलब क्या है, जो कभी भी सदा ही आत्मा है, सदा ही आत्मा है, कभी भी जीवात्मा नहीं बनता है, ये है सत्यता, ट्रुथ। वो कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, तो गॉड ट्रुथ है, सदा ही ट्रुथ है। आत्मा ट्रुथ है क्या, आत्मा तो ट्रुथ है, किंतु फिर भी क्या है, आधा कलप ट्रुथ है और आधा कलप असत्य है, आधा कलप सत्य है, आधा कलप सत्य है, असत्य है। सत्य माना आत्मा सतो प्रधान है, और फिर असत्य माना तमो प्रधान हो गए, रजोतमो में चले गए। तो इस तरह से आत्मा की शक्ति है। तो ये जो अपने आप से बात करने का है, तो परमात्मा सदा सत्य है, सदा पावन है, पावन माना जन्म मरण के चक्र से बाहर है, सदा ही सातों गुणों का भरपूर है। और फिर परमात्मा सदा शांत है, शांत माना ना उससे पास्ट का चिंतन चलता है, शिव बाबा को किसी को मिलेगा, बाबा जब बाप दादा आते हैं दादी के तन में तो उसको याद आता है ये आत्मा तो गड़बड़ करने वाली है ना, ये पहले भी आया था है ना, ये गड़बड़ करने वाला है। पास्ट का चिंतन नहीं आता, ना भविष्य की चिंता होती है, वर्तमान में भी उसको संकल्प नहीं चलते हैं। जो ड्रामा में होता है उसको टच होता है, उसको ऊपर आने का, ऊपर भी जब नीचे आता है तो उसको संकल्प नहीं चलता है नीचे जाना है, सुबह से सोचता नहीं रहता बाबा, सुबह से हम तो सोचते हैं ना आज ये काम करना है, बाबा सोचता रहता है ऊपर से आज नीचे जाना है, अभी नहीं, बाबा कुछ सोचता नहीं। जब ड्रामा में पार्ट होगा वहां आह्वान करते हैं तो बाबा, तब उसका टाइम होता नीचे आ जाता। बाबा की मुरली में था 3-4 दिन पहले, द्वापर युग में मेरे अंदर पार्ट नहीं था, ज्ञान का पार्ट था ही नहीं, अगर मैं होता तो मैं भी कुछ ज्ञान सुना देता ना पहले बीच में, अभी लास्ट में मेरा ज्ञान का पार्ट खुला है तभी ज्ञान सुनाना शुरू किया, नहीं तो द्वापर में भी बाबा तो टच करता था ना, नहीं ज्ञान थोड़ा ज्ञान बोल देता, अरे बेटा तुम तो आत्मा हो ना, तुम क्यों सोचते हो, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा बाप हूं ना, तुम्हारे ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला सबसे अच्छा, था ही नहीं पार्ट, अभी आके बताया ना। तो ये है सदा शांत है और सदा रूहानी प्यार है, वो बाबा जैसे है ना सबको, कोई कैसा भी है ये दुनिया में, कोई कैसा भी है सबको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरीवन इन द यूनिवर्स, ये है परमात्मा। चाहे वो पुण्य आत्मा हो, चाहे पाप आत्मा हो, कुछ भी हो, आतंकवादी हो, चोर हो, डाकू हो, सबको क्या करता है, या ऐसा बोलता है आतंकवादी इसको हवा पानी बंद कर दो, ठीक है काम नहीं करता ठीक से, हवा पानी बंद कर, हम तो जजमेंटल हो जाते हैं ना, बाबा कभी ऐसे जजमेंटल होता है ना, कभी नहीं होता ना, हर एक के लिए सब कुछ करता है, हर एक को सिखाता भी है, बाबा के बच्चे भी हैं, सबको एक जैसी मुरली चलती है। अब जो कोई फॉलो करता है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, तो बाबा जजमेंटल नहीं, सबको स्वीकार करता है, सबको ही मुस्कुरा के देखता है, बल्कि जो ज्यादा गड़बड़ करने वाला उसको ज्यादा मुस्कुरा के देखता है, और जो पता ठीक ठाक चल रहा है बाबा उसको देखता भी नहीं, कई बार हमने स्टेज पे देखा है बाबा को कई बार, तो बाबा कहे ठीक है ये तो ठीक है, इसको क्या देखना, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दादा मैंने ऐसे होता नहीं होता तो बाबा तो जादूगर है ना, तो है जी भट्टी वाला को देख रहा है तो ऐसा मतलब हमारा बाबा है ना। हाँ ज्यादा ज्यादा देखता नहीं, वो बराबर ही देखता, वो मेरे मुंह से गलत निकल गया एक्चुअली, ज्यादा नहीं देखता ज्यादा नहीं देखता, उसको फर्क नहीं पड़ता आप कुछ गड़बड़ करो नहीं करो, जैसा कर्म वैसा फल है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसने कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। हाँ नहीं वो बाबा तो मैं देखा, वैसे बाबा तो मैं इतना उपराम देखा बाबा को, बात ही नहीं कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब कोई बाबा का कितना मुरब्बी बच्चा हो, हमारी दादी बड़ी दादी थी बीमार होती थी, बीमार थी तो बाबा को बोलता था बाबा, जब बॉम्बे में थे ना बाबा को मैं सुबह सुबह अमृत वाले योग में बोलता था बाबा दादी को ठीक कर दो ना, अभी ट्यूब पड़ी हुई निकलती नहीं है, ऐसे ऐसे है तो बाबा ऐसे कर दो ना, बाबा ऐसे कर दो ना, ठीक कर दो एक बार दादी सबसे मिलके ना, फिर आराम से भले योग में बैठ के चली जाए कोई हर्जा नहीं, पर एक बार तो पूरी तरह ठीक कर दो। तो बाबा कहते बच्चे इसको ठीक करूंगा ना तो मेरे को सबको ठीक करना पड़ेगा। तो बाबा तो इतना इम्पार्शियल है, सुप्रीम जस्टिस है ना, उसका किसी के प्रति कर्म भोग है, ब्रह्मा बाबा का कर्म, बाबा खास कहते खांसी होती है तो बाबा क्या कहते थे, शिव बाबा तुम्हारा हिसाब किताब है ना। दादी को हमने गुलजार दादी को देखा, सुबह बुखार 102 बुखार है, सुबह हम गए दादी को देखने गुलाब तबियत कर, फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे दादी को बुखार है, तो दादी को फिर थोड़ी देर में दवाई दी और थोड़ी देर में बुखार ठीक हो गया, हमने कहा बुखार दादी ठीक हो गया, शाम को बाबा आए अगले दिन फिर 102 आ गया तो बाबा ने अपना काम कराया और उसके बाद फिर चलो अब अपना हिसाब किताब पूरा करो। बाबा कुछ माफ नहीं करता है ना, करता है क्या? तो बाबा को, बाबा बहुत अपना साक्षी रहता है, अपना काम किया उसके बाद तुम अपना करो हिसाब, कर्मों को माफ नहीं करता है ना। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं ना, तो अभी इस तरह से हमें जो है क्या जो चारों चीजें ना जैसे अपने आप को मैं बात कर रहा था, तो बाबा सदा क्या है रूहानी प्यार है, रूहानी प्यार का सागर कहते ना, मैं कहता रूहानी प्यार है, सदा अत्यंत सुख है, अत्यंत सुख माना उसे संतोष है, कुछ भी हो रहा है ड्रामा में उसको पता है, अत्यंत सुख का सागर है, अत्यंत सुख माना सुपर सेंस है ही, सेंसेस से ऊपर, सेंस तो उसको है ही नहीं या आंख नाक तो उसको है ही नहीं, तो सदा ही उपराम है ना, वो इच्छा है ही नहीं बाबा को, शिव बाबा को इच्छा नहीं है, और फिर सदा आनंद, आनंद ना बंधन, दे और दे के दुनिया के बंधन के पार है, सदा ही आनंद है और सदा सर्व शक्तिमान है, उसने सब कुछ परखा हुआ है, सत्य को परखा हुआ है, सत्य निर्णय किया हुआ है, सत्य को सत्य के लिए विस्तार को सार में लाया हुआ है, समेटा हुआ है सब कुछ, समेटा हुआ है सब कुछ, सहन किया हुआ है सब कुछ, समाया हुआ है सब कुछ, सामना किया हुआ है और सब कुछ, सबको सहयोग किया हुआ है, फिर भी तो आठों शक्तियों का सागर सर्वशक्तिमान है। आत्मा इसके इसके सापेक्ष में क्या है, आत्मा जो है क्या है, आत्मा के सात गुण क्या है, जितना हम एबीसीडी का अभ्यास करते हैं, जितना हम एबीसीडी का अभ्यास करते हैं उतनी पवित्रता आती जाती है। पवित्रता माना क्या है, पवित्रता माना अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर, सत्य बाप से कंबाइंड होकर फिर दूसरों के सत्य स्वरूप को देखना, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो, दूसरों के सत्य स्वरूप को देखते हुए सत्य स्वरूप में, सॉरी सत्य स्वरूप में स्थित हो, सत्य बाप से कंबाइंड होकर फिर दूसरों के सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना, मतलब सत्य स्वरूप का मतलब आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, परमात्मा बाप से कंबाइंड हो, परमात्मा बाप कौन है, सातों गुणों का सागर है, तो मैं खाली अगर अपने को आत्मा समझ के भी देखूंगा ना तो मेरा क्या होगा, मैं सत्य स्वरूप देख नहीं पाऊंगा, फिर भी मेरे को क्या दिखाई देगा, ये बहुत काम का आदमी है, ये तो बेकार आदमी है, ये तो मेरे इसके बगैर तो मैं रह नहीं सकता, इसको मैं देख नहीं सकता, ठीक है, ये लगाव झुकाव प्रभाव टकराव आएगा, किंतु जैसे बाबा से कंबाइन आ जाऊंगा ना, क्योंकि बाबा तो है सागर है ना, तो फिर मेरे अंदर ये सबका सत्य स्वरूप दिखाई देगा, सब बराबर दिखाई देंगे, जैसे बाबा को सब बराबर दिखाई देते हैं ऐसे मुझे भी सब बराबर दिखाई, आत्मा ही दिखाई देंगे, और आत्मा दिखाई देंगे तो फिर सत्य स्वरूप में व्यवहार करेंगे। साथ साथ पवित्रता में एक चीज और भी है, किसी से लगाव होना भी अपवित्रता है, झुकाव होना भी अपवित्रता है, प्रभाव किसी के प्रभाव में आना भी अपवित्रता है, टकराव में आना भी अपवित्रता है, ठीक है, और तीसरे और क्या अपवित्रता है, ब्राह्मणों के लिए क्या क्यों कैसे करना भी अपवित्रता है, हमारे यज्ञ में हमारे घर में ये ऐसा कर रहा है वो वैसा कर रहा है वो वैसा कर रहा है, इसमें क्या क्यों कैसे करना भी पवित्रता, क्योंकि ड्रामा है ना, भगवान का बनाया हुआ है, भगवान को पसंद है तो हम क्वेश्चन क्यों रेज करें, इससे भी वैध संकल्प पैदा होते हैं, अग्नि जो संडे को मुरली चलने वाली ना, वैध संकल्पों से व्यर्थ का भी त्याग है ना, व्यर्थ का भी त्याग। तो ये अभी तो हो गया आत्मा का देहभान का त्याग, देह के संबंधों का त्याग, अलौकिक लौकिक अलौकिक संबंध का त्याग, और अभी क्या होगा, अभी व्यर्थ का भी त्याग। तो अभी त्याग के ऊपर मुंडिया चल रही ना, तो नेक्स्ट मुंडली वो आएगी। तो ये हमारा जो है अंदर से पवित्रता, तो जितना हमारी पवित्रता बढ़ेगी उतना बाबा से कनेक्शन लगेगा। जैसे आप याद करने बैठते हो ना, हम याद करने बैठते क्या होगा, जिससे लगा हुआ वो याद आएगा, जिसकी तरफ बुद्धि जाएगी ना बाबा को याद करने बैठेंगे, झुकाव वाला याद आएगा, प्रभाव वाला याद आएगा, टकराव वाला याद आएगा, उसकी चित्र बुद्धि में आ जाएगा, क्या क्यों कैसे किया होगा जिसके साथ, वो क्या क्यों कैसे बुद्धि में आ जाएगी। तो जब इन सबसे उपराम हो जाओ तो हमारी बुद्धि बाबा से लगती है, और फिर शांति, इससे पवित्रता से शांति पैदा हो। जब ऐसी स्थिति में रहेंगे तो शांति पैदा, शांति माना क्या, ना पास का चिंतन ना भविष्य की चिंता, वर्तमान में अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत्य बाप से कंबाइंड हो सोचना, सोचो भी तो कंबाइंड होकर सोचो, अकेले मत सोचो, देखना है कुछ किसी को तो कंबाइंड होके, मैं तो पेशेंट देखना है तो मैं क्या करता हूं, कंबाइंड होके देखूं है ना, बाबा से कंबाइंड होके देखूं, अकेले देखा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी है ना। पढ़ना भी कुछ है तो क्या करो, कंबाइंड होके पढ़ो, सुनना भी है तो क्या, किसी की बात सुननी है, कोई बात सुनाने आता है मुझे प्रॉब्लम है, कंबाइंड होके सुनो, बोलना है तो कंबाइंड होके बोलो, खाना है तो कंबाइंड होके खाओ, पैदल करना है तो कंबाइंड होके खाओ, चलो घर या ऑफिस में तो काम करना है तो कंबाइंड होके करो, संबंध संपर्क में आना है तो कैसे करो, कंबाइंड होके करो, और सोना है तो कंबाइंड होके सोचो। तो ये है शांति। देखो 30 विचार जब हमारे आते हैं इसको शांति कहते हैं, उसमें 27 विचार 90% विचार या तो पास से आते हैं तो भविष्य से आते हैं। अगर शांति माना ये पास के विचार आने बंद हो गए, भविष्य के आने बंद हो गए, तीन विचार रह गए एबीसी आत्मा बाबा कनेक्शन, तो ये है शांति। तीन विचारों को शांति कहते हैं, तीस विचार को अशांति कहते हैं, ठीक है। तो जितना हम ये करते हैं, इतो तपस्या होगी, तो ये तपस्या है, ये मेडिटेशन है। तो त्याग हुआ चार चीजों का तो तपस्या हुई है ना, तो ये ऑटोमेटिक शांति आ गई। शांति से क्या होगा, रूहानी प्यार। अब सब कुछ मैंने पास्ट का पास्ट को भूल गया, भविष्य को भूल गया, और अभी वर्तमान में बाबा से कंबाइंड हूं, हर काम वैसे करता हूं, तो अब क्या होगा, इसकी रूहानी प्यार की परिभाषा क्या है, सारे विश्व में हर आत्मा को उसके पार्ट के साथ, जो भी रोल निभा रहा है, चाहे रावण का, चाहे मेघनाथ का, चाहे कुंभकर्ण का, चाहे वो सीता का, शूर्पणखा का, जो भी रोल निभा रहे हैं, उसको उसके पार्ट के साथ महत्व देते हुए आदर से स्वीकार करना, और ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के अंदर उसकी पालना करना, ये रूहानी प्यार की परिभाषा है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, हमारे घर में ही, हमारा घर है ना, जो वैसे रामायण महाभारत आपने सुने, उसके टाइटल्स के एक्टर्स होते हैं, हमारे घर में क्या है, सीता भी है, राम भी है, रावण भी है, हनुमान भी है, मेघनाथ भी है, कुंभकर्ण भी है, केकई भी है, मंथरा भी है, और हमारी हमारे घर की ब्यूटी क्या है, हमारे आपस में क्या होता है, अभी थोड़ी देर को राम बना हुआ है, थोड़ी देर में मेघनाथ बन जाता है, थोड़ी देर में रावण बन जाता है, थोड़ी कुंभकर्ण बन जाता है, थोड़ी देर में सीता बनी है, अभी केकई बन जाती है ना, थोड़ी देर में मंथरा बन जाती है ना। तो ये रूप बदलते हैं, और हमको स्वीकार करना पड़ेगा, हमारा बच्चा है, हमारी युगल है, हमारा कोई माता पिता है, भाई बहन है, दोस्त है, वो ऐसे बन जाते हैं, और हम अगर उसको जजमेंटल होकर उसको कार्य करेंगे तो रूहानी प्यार नहीं है, फिर बुद्धि उसमें जाएगी। अभी हरेक आत्मा अपना अपना पार्ट निभा रही है, तो इस तरह से उसको देखें, उसको महत्व तो भी महत्व देना, आलस है, बेटा है आपका, आलस कर रहा है, सो रहा है, आप उठा रहे, उठता नहीं है, कहता पापा मैं देर से सोया था, ठीक है सो दे, कोई बात, सो जा रहा, उसके बात को मान लो, महत्व दे, कोई बात, सो जा, सो जा, है ना। और फिर भी उसको एक्सेप्ट करो, ये नहीं कि उसको एक्सेप्ट, आदर से स्वीकार करो, तू तो आलसी है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तो ये ज्ञान हुआ क्या, ज्ञान है ये, योग लगेगा फिर आपका, रूहानी, ये रूहानी प्यार है। और ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के अंदर फिर उसकी पालना करो, ये नहीं कि उसका आउट ऑफ जाके उसको पास कराओ, एग्जाम में पढ़ा नहीं उसने, फिर आउट अप्रोच लगा के उसको पास कराओ, फेल होगा तो फेल होने दो, कोई हर्जा नहीं, फिर अगले साल समझ के फिर पास हो जाएगा, हम क्या करते हैं, नहीं फिर उसके अप्रोच लगाते हैं, ये प्रिंसिपल मेरी जान पहचान का है, इसको बोलता हूं पास करा दे। तो ईश्वरीय नियम मर्यादा है, ये रूहानी प्यार नहीं, फिर लौकिक प्यार हो गया ये, ठीक है। तो ये रूहानी प्यार है, फिर अतिंद्रिय सुख। जब ऐसा प्यार आप कर लोगे ना, तो आप दुनिया सबको आपने स्वीकार कर लिया, अब आप सारी दुनिया से ऊपर चले जाओगे, तो ईश्वर का प्यार महसूस कर पाओगे आप सचमुच में। जब ऐसा सबको स्वीकार कर लेते हैं, मैं तो योग का अभ्यास ऐसे करता हूं, तो ऐसा लगता है बाबा, अब बाबा की गोद में आ गया, अब बाबा मुझे प्यार से देख रहा है, बच्चे तुमने सबको स्वीकार कर लिया, अब आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आओ बच्चे मेरी गोद में आ जाओ। तो बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं, और फिर बाबा की गोद में पहुंच के बाबा प्यार से सिर पे हाथ रख देता है, बच्चे ठीक है, बहुत अच्छे हो तुम। तो ये जो फीलिंग है ना, बाबा मेरा, मैं बाबा का, ये अतिंद्रिय सुख की फीलिंग है। अब कुछ और नहीं चाहिए, पाना सा सुख पा लिया, काम क्या बाकी रहा, जैसे कहते ना, अब ये संतोष आ गया, संतुष्टता आ गई, अब कोई इच्छा नहीं रही। ये जो फीलिंग है ना, ये अतिंद्रिय सुख की अनुभूति कराती, और ये अतिंद्रिय सुख की अनुभूति आ गई तो फिर आनंद की अनुभूति, फिर बाबा तो मेरे सामने ही है, फिर मैं बाबा की याद में खो गया, लवलीन हो गया, अब मुझे देह और देह की दुनिया भूल गई। तो ये जो फीलिंग है आनंद की फीलिंग है, इसमें हमारे हार्मोन्स, सारे हार्मोन्स ना जितने हैं ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल, गोनेट्स, ये सातों जो ग्लैंड्स हैं हमारी, इनके हार्मोन बैलेंस में निकल जाते हैं, सारी शरीर की और मन की बीमारियां गायब हो जाती है। अतिंद्रिय सुख आ गया तो लीवर अच्छा काम करने लगता है, सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं, आते काम करना अच्छा, गैस बननी बंद हो जाती है, एसिड बनना बंद है ना, हाजमा ठीक होने लगेगा, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति आ गई। इच्छाएं होंगी तो सेंसिटिव नेचर होगी तो आंतों में गैस बनेगी, भारीपन होगा, एसिड बनेगा, तो आनंद आ गया। अब आनंद आ गया तो जब जिसने आनंद का अनुभव कर दिया, जिसने अतिंद्रिय सुख का अनुभव कर लिया, अब उसको सत्य को प्रकने की शक्ति आ गई, ये सत्य है, मुझे तो यही करना है, अमृत वेला, भले मैं 12 बजे रात को सोया, मैं 4 बजे 3:30 उठूंगा ही उठूंगा, क्योंकि बाबा उसमें मुझे मिलता है, वेट करता है मेरी, आओ बच्चे आओ मेरी गोद में आ जाओ, मुझे वो थोड़ी देर का चाहिए, 2 मिनट का आनंद मिलता है, मुझे जाना ही है, क्योंकि 2 मिनट का आनंद 2 घंटे की नींद के बराबर है, 2 मिनट का आनंद 2 घंटे की नींद के बराबर है, क्या समझे? अब मैं 2 मिनट आधा घंटा सोऊं के 2 मिनट आनंद का अनुभव करूं, है 2 मिनट का आनंद अनुभव, और 6 मिनट आनंद आ गया तो कितने कितने 6 घंटे की नींद के बराबर हो गया, सारी रात नहीं सोए आप, 6 मिनट का आनंद आ गया तो क्या हो, 6 घंटे की नींद हो गई। रियली प्रैक्टिकल होता है, अनुभव सुनने का टाइम नहीं तो मैं सुनाता आपको, तो ये जो है आनंद की स्थिति है। तो इसलिए अमृत वेला मुहा धोके ब्रश करके अलर्ट होके प्यार और खुशी से बाबा को याद करो, एबीसीडी का रिवाइज, एबीसी विजुलाइज नहीं करो, एबीसीडी को अंदर रिवाइज करना और रियलाइज करो, सत्य का अनुभव करो, अनुभव करेंगे और आप देखेंगे आप अपने आप ही पवित्रता आएगी, मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, शांति आएगी, मना नेगेटिव पास्ट और फ्यूचर खत्म हो जाएगा, और सबको स्वीकार कर लोगे, बाबा की गोद में पहुंच जाओगे, फिर बाबा से देह की दुनिया भूल जाएगी, लवलीन हो जाओगे, और फिर सत्य को प्रकट शक्ति आ गई, शक्ति आ गई, अब निर्णय करने शक्ति आ गई, सत्य निर्णय करने शक्ति आ गई। अब इसके लिए विस्तार को सार में लाने, पहाड़ जैसी बात भी हमने क्या कर दी, पहाड़ को राई बना दिया, समेट के मन बुद्धि समेट के ऊपर लगा दी, अब मन बुद्धि ऊपर लग गई ना, अब नीचे वाले क्या करेंगे, खींचेंगे, अब मैं तो ऊपर लटक गया, अब ऊपर नीचे वाला क्या करेंगे, देह नीचे खींचेगी, नहीं देह नीचे खींचे, बीमारी खींचेगी, देह के संबंधी खींचेंगे, तुम क्या करते हो सुबह सुबह 8 बजे तक, तो तुम्हारे पता ही नहीं होता तुम कहां रहते हो, मुरली में चले जाते हो, इतनी देर लगाते हो, घर का ध्यान है ही नहीं है आपको, अब वो जो मर्जी बोलो सहन कर लो, क्योंकि मुझे पता है वहां आनंद आता है ना, वहां शांति आती है, पवित्रता शांति खुशी आती है, जो मुझे जहां शांति आ रही है मैं तो वहां जाऊंगा ना, भले तुम कुछ मर्जी बोलो, है ना, सहन कर लिया, आप सहन कर, ये सहन करके लोगों को बतियाना भी नहीं, मेरे घर वाले तंग करते हैं, संभालो, बोलने की आवश्यक बोलोगे तो आपके विचार व्यर्थ गए नहीं है, कल की मुरली था, एक एक सेकंड वैल्यूबल है आपका, एक एक सेकंड वैल्यूबल है, ये टाइम बाबा की याद में लगाया वही फायदे का, बाकी सब बेकार गया। तो ये हमारा ये वाली शक्ति आ गई, और उसके बाद क्या हुआ, अब सहन कर लिया संभालिया, फिर अब सहन कर लिया संभालिया तो सामना करने की शक्ति आ गई, फिर और भी किसने बोलना है तो आप भी बोल लो, आपने कुछ करना तो आप भी कर लो, है ना, जब सामना कर लिया तो फिर सहयोग करने की शक्ति आ गई, अब वही कभी कुछ तकलीफ हुई तो कहते हैं भाई सब आप थोड़ा हमारा, आप तो बाबा के घर में जाते हो ना, आप थोड़ा मेरा ठीक कर दो ना, आप मेरे लिए बाबा को बोलना ही थोड़ा मेरे को ठीक कर दे। अच्छा ठीक करेंगे, बाबा को बोल देता है ना, समझ गए। तो ऐसे आठों शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है और यही आठों शक्तियां आना यही है हमारी तपस्या। और फिर इससे सेवा होती है, सेवा भाषण करने से नहीं होती है। आप अपने घर में भाषण करो, बेटे को भाषण करो, बेटी को भाषण करो, अपने माँ को भाषण करो, बाप को भाषण करो, या अपनी पति को, पत्नी को भाषण करो, पति को भाषण करो, सुनते हैं क्या? हाँ मम्मी बहुत देखा आपको, जितना गुस्सा आपको आता है ना उससे उससे तो कम मेरे को आता है ना। बच्चे साफ साफ बोलते नहीं बोलते, आपके पति या पत्नी आपस में साफ साफ बोलते नहीं बोलते। आप कर्मों से दिखाओ धैर्यता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, संतुष्ट हर बात में कैसे रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा बोलते मीठा बोलते हैं, ये कर्मों से दिखाओ तो सेवा होती। और हवामंडल, जब आपका जब आप ऐसे शांति माना, शांति माना आठ, आठ की फ्रीक्वेंसी है ना, आठ की फ्रीक्वेंसी, और जब आठ पे आते हैं ना छह इंच का आपका हवामंडल हो जाता है, छह इंच का, पंद्रह पे लगभग स्किन के लेवल पे होता है, और पांच छह जब शांति माना आठ अल्फा रिदम तो छह इंच का आपका हवामंडल हो जाता है। जब प्यार माना सबको स्वीकार कर लिया छह, उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी छह हो जाती है, उसे हम कहते हैं थीटा रिदम, तो आपकी चार फुट का आरा हो जाता, चार फुट का हवामंडल हो जाता है। और जब आप क्या करते हो, जब आप पतंजलि सुख की अनुभूति कर रहे होते ना, उसमें आपका हवामंडल 64 फुट का हो जाता है। कितने फुट का? 64। आपका प्लॉट कितने बड़ा है, आपका मकान कितने बड़ा होता है? 30x40 फुट का, नहीं या 60x40 फुट का है ना। तो आपके मकान में जहां भी आप जाओगे वहां पे 64 फुट का आपके चारों तरफ क्या हवामंडल हो गया, तो शांति प्यार खुशी की एनर्जी आ गई। अब क्या होगा, अब उसमें जो भी आएगा ना सेवा, सबकी सेवा हो गई, अपने आप ही सबको शांति अनुभव होगी, प्यार अनुभव, खुशी आनंद अनुभव होगा। किसी कुछ बोलोगे समझ जाएगा तुरंत, नहीं तो समझेगा ही नहीं, भले भाषण देके चले जाओ कुछ समझेंगे नहीं। इसे सेंटर में आते हो ना, सेंटर में बैठ के मुरली सुनने समझ में आती है, घर में पढ़ो तो समझ में नहीं आती, क्योंकि घर में वायुमंडल नहीं ना आपका, ये सेंटर पे इसलिए आना चाहिए। ठीक है, तो त्याग किस चीज का, लास्ट में सिनॉप्सिस है ना, टेक होम मैसेज, देह भान का त्याग करो ये झूठ है, देह के संबंधों का त्याग करो ये भी झूठ है, देह के स्वभाव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी झूठ है, इसका भी त्याग करो, देह के संस्कार आदल आलस अलबेलेपन का भी 10 बातें मैंने बताई उसका भी त्याग कर दो ये भी झूठ है, और देह के पदार्थों का भी त्याग, त्याग माना मन बुद्धि से निकाल दो है ना, और फिर तब तपस्या होगी, तब मतलब आपके अंदर क्या होगा, ये ज्ञान का मनन चिंतन चलेगा, तब बाबा हमारी दिल्ली में आएगा। जब बाबा दिल में आ जाएगा विवेक काम करेगा, विवेक ईश्वर जैसा हो जाएगा, और हमारा जजमेंट पावर दिव्य हो जाएगी, चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो जाएगा, और फिर हमारी स्मृतियां जागृत होंगी ब्राह्मण स्वरूप वाली, ब्राह्मण माना बेहद में रहने वाली मन और बुद्धि, तब बुद्धि मन और बेहद में, तब बुद्धि हमारी कहां, बुद्धि और मन कहां रहेगा, बेहद में रहेगा, ब्राह्मणा बेहद मन, हमारा मन और बुद्धि बेहद में रहेगी, ऑटोमेटिक वृत्ति हमारी रूहानी हो जाएगी, भावना शुभ भावना सबके प्रति हो जाएगी, शुभकामना हो जाएगी, संकल्प अपने आप पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली कल्याणकारी हो जाएंगे, और भले आपकी गाड़ी खटारा है, खटारा माना हार्ट ठीक काम नहीं करता, आपके फेफड़े ठीक काम नहीं करते, लंग दिमाग काम नहीं करता, मेमोरी भूल जाती है, टायर पंचर है, टायर पंचर माना आपके घुटने खराब हो गए है ना, कमर आपका एक्सेल भी टूटा हुआ है ना, एक्सेल होता है कमर, वो भी एक्सेल भी टूट गया है ना, उसमें भी कई जगह मन के हिले पड़े हैं ना, तो क्या होगा, तो भी खटारा गाड़ी एक अच्छा ड्राइवर क्या करेगा, खटारा गाड़ी को ठीक ठाक चला लेगा, और अनाइट ड्राइवर क्या करेगा, नई नई गाड़ी को भी एकदम खटारा बना देगा। ठीक है, इसलिए आज के छोटे छोटे बच्चे भी क्या है, बीमार रहते हैं ना, नई गाड़ी है और फिर भी चलती नहीं, चलानी नहीं आती उनको गाड़ी ना। ठीक है, तो तपस्या ऐसी सेवा, ऑटोमेटिक सेवा होगी और सारे विश्व की सेवा होगी। जब आप जीरो स्थिति में पहुंच जाओगे तो सारे बाबा की गोद में जाके बैठ गए परम धाम में, तो सारे विश्व की सेवा होगी। ओके, ओम शांति।
चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक्स। एक मिनट साइलेंस करें।